ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली की मुख्य पॉइंट याद है किसी को? पोता मेल रखना। बाबा ने कहा कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं, इसीलिए रोज इनका पोता मेल रखो। फिर बाबा ने ये भी बात कही कि बुरी आदतों को मिटाने के लिए हो सके तो अपने आप को ही फटकार लगाओ, मतलब अपने आप को ही सजा दो। और दो कर्मेंद्रियों पर मुख्य बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, एक तो आंखें और दूसरा जबान। तो हम सभी राजयोगी हैं और बाबा ने कहा कि राजयोगी अर्थात कर्म इंद्रियों के राजा स्वराज्य अधिकारी हैं। कर्म इंद्रियों पर अधिकार माना जब कर्मेंद्रियां बाबा की श्रीमत अनुसार चलती हैं, और कर्मेंद्रियों के वश माना कर्मेंद्रियां मनमत से चलती हैं या संस्कारों के वश चलती हैं। तो एक है कर्मेंद्रियां हमको चलाती हैं, एक है हम कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। तो स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां दोनों ही अधिकार में होने चाहिए। हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां आंखें, कान, मुख, हाथ, पांव, ये हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। और बाबा ने आज आंखों के विषय में तो बहुत स्पष्ट बातें कही हैं। तो सबसे बड़ी श्रीमत है आंखों के लिए कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि वृत्ति चाहिए। हम हरेक के मस्तक पर आत्मा देखें, अपने को भी आत्मा समझें और जिसके भी संपर्क में आते हैं उसे हम आत्मा ही देखें। तो भाई भाई की दृष्टि हो हमारी, वो शुद्ध दृष्टि है। लेकिन अगर दैहिक दृष्टि होती है तो क्या परिणाम होते हैं, वो बाबा ने आज की मुरली में बताया। क्योंकि अगर हम देह को देखेंगे, आत्माभिमानी नहीं है, और कभी कभी हम देह अभिमान में भी आ जाते हैं क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं, और जब देह अभिमान में आते हैं तो देह के स्तर पर तो बहुत अंतर है। अब कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटे कद का होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, या कहा जैसे बहन भाई, स्त्री पुरुष, ये भी अंतर है। तो यदि हम देह की पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हुए तो फिर नजदीक आने की कोशिश करते हैं, यानी कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा संबंध हो, उनसे हमारा हमारी बातचीत हो, और अगर वो थोड़ा बढ़ता है तो फैमिलियरिटी हो जाती है, अपनापन आ जाता है जिसको कहते हैं, वो मेरे ज्यादा करीब हैं, मेरे ज्यादा समीप हैं, ये फीलिंग। तो बाबा इसके लिए भी मना करते हैं कि हमें ज्यादा फैमिलियरिटी में भी नहीं आना है, जो हमारा संबंध संपर्क होना चाहिए न्यारा और प्यारा। और उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर लगाव में भी आ जाते हैं, और फिर लगाव की स्थिति में जो आज बाबा ने कहा, फिर इच्छा होती है इनको कुछ खिलाएं, इनको कुछ सौगात दें, कैसे उनको अपना बनाकर रखें, तो उसकी फिर ये विधियां अपनाते हैं, और फिर वहीं से विकार के अंश वंश शुरू हो जाते हैं। तो वो स्थिति ही पैदा ना हो उसके लिए सदा ही हमारी आत्मिक दृष्टि वृद्धि हो, और आत्मा समझकर ही जब हम संबंध संपर्क व्यवहार में आएंगे तो न्यारे होकर हम प्यारे बने। ऐसा नहीं हम स्नेह से व्यवहार में नहीं आ रहे, स्नेही हैं लेकिन न्यारे भी हैं। फिर दूसरा बाबा कहता है कि आत्मिक दृष्टि माना गुणग्राही दृष्टि, सदा ही हमें आत्मा के गुण दिखाई दें। क्या देखना है हमें? किसी की भी कमी कमजोरी अवगुण नहीं देखना है, हैं सब में, हम सभी पुरुषार्थी हैं लेकिन गुण भी हैं, तो गुण दिखाई दें। और तीसरा, जो हमें नहीं देखना है, अब हम संसार में रहते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ दृश्य हमें ऐसे दिखाई दे जाते हैं जो हमारे देखने योग्य नहीं है, तो अब हम आंखें तो नहीं बंद कर लेंगे लेकिन देखते हुए भी उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। या जो आज के साधन हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है, जो भी है, तो ये साधन हमको सेवा के लिए बाबा ने दिए हैं। चाहे हम उससे अपने स्व की उन्नति करें, स्व सेवा करें, या दूसरों की सेवा के लिए उसे हम प्रयोग करें, लेकिन उसमें वो सब चीजें भी उपलब्ध हैं जो हमें नहीं देखना है, जो हमारे लिए निषेध है। लेकिन अगर हम न देखने का कायदा होते हुए भी देखते हैं तो इसका मतलब आंखों पर अभी हमारा कंट्रोल नहीं है। या कहीं भी बाबा कहता है इसको, जैसे क्रिमिनल आई और सिविल आई की बात बाबा करते हैं, तो क्रिमिनल आई तो अभी नहीं है लेकिन कहीं भी अगर हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल होती है तो भी हम कहेंगे कि हमारा दृष्टि पर, हमारी आंखों पर पूरा अधिकार अभी नहीं है। कानों के लिए हमें सदा ही कानों से श्रीमत के अनुसार ज्ञान रत्नों को श्रवण करना है। या जो समर्थ बनाने वाली बातें हैं वही हमें सुननी है, जिसमें हमारी उन्नति होती हो। लेकिन अगर हम परचिंतन में चले जाते हैं, व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, किसी के निंदा ग्लानी की बातों को सुनने में रुचि लेते हैं, क्योंकि ये टेस्ट है, वही बाबा ने कहा कि द्वापर युग से लेकर के हम आज तक कथाएं सुनते रहे, तो अगर हमें सादा भोजन मिलता है, हालांकि वो ताकतवर होता है, सादा भोजन ही न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जब तक कि उसमें मिर्च मसाला ना हो, जब तक कि चटनी अचार ये सब साथ में ना हो, वैरायटी जैसे हम कहते हैं। तो केवल ज्ञान सुनना कई बार हमारे लिए वो भारी भोजन हो जाता है। तो ये जो मिक्स बातें हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर के समाचार लेन देन करना, फिर थोड़ा बहुत उनके साथ साथ जिनके समाचार लेन देन कर रहे हैं उनकी कमजोरियों की भी चर्चा कर लेना, वो कैसे हैं, क्या करते हैं, ऐसे हैं, और अगर हमने सुना या चर्चा की उसका मेरे मन पर प्रभाव ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी वृत्ति को अशुद्ध कर रहे हैं, यानी उस आत्मा के प्रति जिसके बारे में हम सुन रहे हैं मेरी वृत्ति बदल जाती है। मानो हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने उनके बारे में चार बातें मुझे कह दी, हमने सुन ली। अब सुनने के बाद वो तो सुना के चले गए, लेकिन अब मेरा उस आत्मा के बारे में क्या चिंतन चलता है? हम तो ऐसा समझते थे इनको, ये ऐसे भी हैं क्या, ऐसे भी करते हैं लोग, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब जब मैं उससे व्यवहार में आऊंगी दोबारा, तो वो तो मेरे से बहुत स्नेह से मिल रहे हैं, लेकिन मैं उतने स्नेह से मिल रही हूं? नहीं मिलेंगे हम, क्योंकि हमें वो जो सुनी हुई बातें हैं वो मेरे वाइब्रेशन, जैसे वृत्ति और वाइब्रेशन की बात की हमने सुबह, क्योंकि वो मेरी वृत्ति में चली गई तो वही मेरा वाइब्रेशन उस आत्मा के प्रति जाएगा, तो वो हमसे पूछ भी लेंगे, क्या बात है भाई आज आपका मूड ठीक नहीं है क्या, क्योंकि उतने स्नेह से अब नहीं मिल रहे हम उनको। तो ये तो हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब है। हो सकता है उनका उनके साथ कोई हिसाब किताब होगा तो इस तरह का व्यवहार उनको लगा, हमारे साथ उनका वो हिसाब किताब नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी किसी की बातें हमें सुनाता है तो हमें सुनना ही नहीं चाहिए। हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, हम बोल सकते हैं चलो हम कोई और बात करते हैं, या हमारे पास तो मुरली बहुत अच्छा तरीका है, हम कह सकते हैं आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, या ये बात बहुत अच्छी थी आज की मुरली में, या उस आत्मा को कोई गुण हमें हमें पता है, मतलब हमें महसूस होता है, तो हम उसकी निंदा सुनने की बजाय हम उसके गुण पर बात करें कि नहीं नहीं ये तो इसमें ये विशेषता भी है, ये तो इनकी अच्छी बात भी है। पर कई बार ऐसा होता है मानो हमारे से कोई बड़े हैं, सीनियर हैं, और वो हमें सुना रहे हैं और उनके आगे हम ना नहीं कर सकते, सुनना ही पड़ता है हमें, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो सुना हमने, लेकिन सुनने के बाद बाबा कहते हैं दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो, यानी उसका असर मेरे मन पर नहीं आना चाहिए, उसे अपने दिल पर नहीं लेना है। पर होता ये है कि कान की जो शेप है ना वो क्वेश्चन मार्क की है और दोनों कानों के बीच में दिमाग है, तो अगर वो चली गई और मेरा अटेंशन नहीं है तो फिर स्वाभाविक रूप से उस पर हमारे प्रश्न उठने लगते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आती है कि जब हम सुनते हैं तो फिर हम अपने तक नहीं रखते, हम दूसरों को भी जरूर कहते हैं, क्योंकि कोई जो भी हमारा अपना होता है उसको हम सुनाकर हल्के हो जाना चाहते हैं, फिर उनका कोई अपना होता है वो उसको सुना देते हैं, और वो बात जो नहीं फैलनी चाहिए, अब कमजोरी की बातें हमारा परिवार है हमारा संगठन है वो नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन वो फैलती है और वातावरण को कमजोर बनाती है, और वातावरण कमजोर बनता है हम निमित्त बनते हैं, तो बाबा कहता है उसका भी 100 गुना दंड है। हालांकि ये सूक्ष्म चीजें हैं, माना जिनको हम ज्यादा, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि चोरी करेंगे उठा लेंगे, उठा के चीज खा लेंगे तो समझते ही नहीं है कि ये पाप है, उससे हम कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना, बनी हुई चीज है पड़ी है और हमें अच्छी लगती है, हमने उठा के खा ली तो क्या हुआ। तो ऐसे ही ये सारी जो हम व्यवहार में करते हैं, कई बार हम इसको गलत नहीं समझते हैं, हम समझते हैं ठीक है ना ये तो चलता ही है, कौन है जो नहीं करता है ऐसा, सभी तो ऐसा करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। तो एक बार एक राजा के पास एक शिल्प का 3 मूर्तियां लेकर के आया, तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी थी लेकिन उनके दाम में अंतर था, पहली का उसने 1000 बताया, दूसरी का 10,000 बताया, तीसरी का 50,000 बताया। तो राजा ने कहा तीनों तो एक जैसी हैं, तीनों के दाम क्यों अलग अलग हैं। उसने कहा महाराज ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है, मैं आपको प्रदर्शित करके बताता हूं। तो उसने एक तार लिया और उसने पहली मूर्ति के कान में तार डाला जो उसके मुंह से बाहर आ गया। तो उसने कहा कि महाराज ये ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई बात सुनता है उसे समा नहीं सकता, वो तुरंत बोल देता है। तो ऐसे व्यक्ति आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके दरबार का राज राज नहीं रहेगा और उससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है, ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होते हैं। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वो उसके मुंह से तो बाहर नहीं आया, वो दूसरे कान से बाहर आया। तो उसने कहा महाराज ये ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई बात सुनता है, बोलता तो नहीं है लेकिन वही कि दोनों कानों के बीच में दिमाग है, इसलिए उसके मन में हलचल होती है, वो उलझन में आ जाता है उन बातों को लेकर के। और ऐसे व्यक्ति भी आपके दरबार के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो सही निर्णय नहीं ले सकेंगे, अगर मन अशांत है मन उलझन में है और अगर उनको कोई निर्णय लेना है तो उनके लिए मुश्किल होगा, वो सही निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो वो भी आपके दरबार में नहीं होने चाहिए। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, तो वो ना तो मुंह से बाहर आया ना कान से बाहर आया, वो सीधा उसके पेट में चला गया। तो उसने कहा कि महाराज ये ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो ना तो कोई बात सुनकर कहता है और ना ही उसके मन पर उसका कोई प्रभाव होता है, जैसे कि वो बात हुई नहीं, वहीं समाप्त हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति ही विश्वास पात्र होते हैं और वही आपके दरबार में होने चाहिए। तो देखिए विश्वास पात्र लोगों की कीमत कितनी होती है, कि जो राज की बात है जो हमें नहीं कहनी चाहिए कभी भी, चाहे वो किसी के बारे में हो, चाहे वो यज्ञ के बारे में भी हो, वो हम कभी भी ना कहें। फिर हमारा मुख पर अधिकार, तो हमारे मुख से ऐसे वचन कभी ना निकलें जो बाबा कहते हैं किसी को दुख देने वाले हों, किसी को नीचा दिखाने वाले हों, किसी का अपमान करने वाले हों, किसी को क्रिटिसाइज करने वाले हों। और ज्यादातर जब हम गुस्से में आते हैं तभी ऐसे शब्द हम बोलते हैं। मुख के लिए श्रीमत क्या है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो, जो गांधी जी के तीन बंदर कहते हैं। वो तो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, सभी कर्म इंद्रियों के लिए है, पर मुख के लिए मुख्य बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, कम बोलना यानी अंतर्मुखी रहना। जब हम ज्ञानी होते हैं तब जितना हम कम बोलते हैं उतना हम अपनी शक्ति का संचय करते हैं। अगर हम व्यर्थ बातचीत में जाते हैं तो अपनी शक्तियों को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी होता है वो बाबा से सहज योग लगा सकता है, उसके मन के तार बाबा से इजीली जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बातों में उसकी बुद्धि नहीं होती है। पहले हम देखते थे यज्ञ में एक दिन होता था मौन रखने का, सोमवार के दिन जब हम आए थे यहाँ शुरू शुरू में, तो मेजोरिटी भाई बहने मौन रखते थे। आज भी कई प्रवृत्ति वाले भाई बहने, कई सेंटर की बहने भी सप्ताह में एक दिन मौन रखती हैं। पर चलो हमारी कारोबार ऐसी है हम नहीं रख सकते मौन, तो सुबह जो 4 से 8 बजे तक का समय है उस समय तो हमें मौन में रहना ही है। ये हम अपने लिए एक निश्चित कर लें कि चाहे जो हो उस समय हम फोन नहीं लेंगे किसी का, या आपस में भी हम बातचीत में नहीं आएंगे, जितना बहुत जरूरी है वो अलग बात है। तो मौन का अभ्यास करना। और दूसरा धीरे बोलना, बहुत जोर जोर से बहुत ऊंची आवाज में बात करना ये रॉयल्टी नहीं है। हम तो बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं रॉयल आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो हमारी जो सभ्यता होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं उतना ही सुनाई दे, उससे दूर तक भी आवाज ना जाए। और कुछ लोगों की आवाज तो इतनी ऊंची होती है कि ऐसे लगता है कि वो बोल नहीं रहे, गुस्सा कर रहे हैं। फिर उनको कहेंगे तो वो बोलेंगे नहीं ये तो हमारा वॉल्यूम ही ऐसा है, हम गुस्सा नहीं कर रहे, तो मेरी आवाज ही ऐसी है। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि माइक का आवाज अगर हम कम ज्यादा कर सकते हैं तो ये मुख भी तो आत्मा का माइक है, तो इस पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो हमारे बोल हमारी सभ्यता का दर्पण है। इस पर भी एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक राजा, मंत्री और सिपाही शिकार के लिए गए, और होता है शिकार का पीछा करते करते कई बार भटक जाते हैं, तो तीनों ही अलग हो गए। तो ढूंढ रहे थे एक दूसरे को, वापस लौटना था, तो वहां पर देखा कि एक कुटिया है और उसमें एक साधु रहता है, और वो साधु जो था अंधा था। तो पहले वहां सिपाही पहुंचा और उसने उसे देखा तो वो समझ गया कि ये अंधा है। तो जैसा उसका स्वभाव था उसने कहा ये अंधे यहाँ पर कोई आया था मुझे ढूंढते हुए, इस तरह से उसने उसको बातचीत की। तो उसने कहा कि नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया, पूछ के वो आगे चला गया। फिर थोड़े समय के बाद मंत्री खोजता हुआ आया और उसने भी देखा कि ये साधु है, अंधा है, तो उसने थोड़ा रिस्पेक्ट से, अंधे बाबा आप मेरे को ढूंढते हुए यहाँ कोई आया था? तो उसने कहा हाँ एक आया था, वो अभी इस दिशा में गया है। तो मंत्री उस दिशा में गया। थोड़े समय के बाद खोजते हुए राजा भी वहां पहुंचा। राजा ने भी देखा कि साधु अंधा है, लेकिन राजा ने उसे बहुत सम्मान से कि बाबा जी यहाँ मुझे ढूंढते हुए कोई आए थे? उसने कहा कि हाँ राजन, सीधा ही उसने संबोधित किया, हाँ राजन आपके सिपाही और मंत्री अभी अभी इस और गए हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आपको तो दिखाई नहीं देता है, तो आपको कैसे पता कि मेरे सिपाही और मंत्री मेरे से पहले यहाँ गए हैं? तो उसने कहा कि राजन आप सबके व्यवहार से मैं समझ गया कि कौन सिपाही है, कौन मंत्री है और आप राजा हैं। तो हमारी वाणी जो है वो हमारी श्रेष्ठता का दर्पण होती है, और इसीलिए कहते हैं ज्ञानी की ये निशानी मीठी सी उसकी वाणी, है ना, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। तो यहाँ कई बार जब भाई बहने आते हैं मधुबन में तो बहुत तारीफ करते हैं कि यहाँ के भाई बहनों की वाणी कितनी मीठी है, कितना मीठा बोलते हैं। तो कैसे मिठास आई? क्योंकि शुभ भावना है। हर आत्मा के प्रति जब शुभ भावना होती है तो हमारे बोल ऐसे ही होते हैं, लेकिन जैसे कहा कि जब गुस्सा आता है तब जो हम नहीं बोलना चाहते वो हम बोलते हैं, फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं। और अगर ऐसे वचन अभी भी हमारे मुख से निकल जाते हैं, चाहे जो भी हो, कई बार काम का प्रेशर होता है, सेवा बहुत होती है, इन दिनों तो अभी उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन जब यहाँ सीजन होती है, जब बहुत भाई बहने, हजारों भाई बहने होते हैं, इतना काम संभालना पड़ता है, हाँ लगातार दिन रात ना देखते हुए काम करना पड़ता है, और हमारा ज्ञान योग उतना रहता नहीं, फिर मुरली हम ढंग से सुन नहीं पाते, योग हम उतना समय नहीं दे पाते, तो जो आत्मा की शक्ति है वो कम हो जाती है, और तब ऐसी स्थिति हमारी बनती है कि जो वचन हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए वो फिर आने वाली आत्माओं के प्रति भी निकल जाते हैं। फिर वो कई बार सोचते हैं मधुबन निवासी है ऐसा बोलते हैं, वो तो देवता समझते हैं कि जो मधुबन में रहते हैं हम तो देवी देवताओं की दुनिया में आए हैं। तो वो समय विशेष हमें अटेंशन देना होता है कि ऐसी स्थिति में भी हमारे मुख से कभी किसी आत्मा के प्रति ऐसे वचन न निकल जाएं जो उनको दुख पहुंचे, और अगर निकलते हैं तो हम कहेंगे मुख पर अभी हमारा अधिकार नहीं है। ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं हमारी, मन पर अधिकार, बाबा कहता है जब चाहे हम जो स्थिति बनाना चाहें, जो संकल्प करना चाहें, श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नहीं कि मन परिस्थितियों के वश सोचता रहता है, यानी परिस्थितियों के हम गुलाम हैं, जैसी परिस्थिति आई वैसे ही मेरा चिंतन चलता है, सुख की परिस्थिति आई तो सुख और खुशी के विचार, और अगर दुख की परिस्थिति समस्या आ गई तो फिर वही चिंतन मेरे मन में चल रहा है, नहीं। ज्ञान से यानी स्व स्थिति से हम अपने चिंतन को दिशा दे सकें, ये हम सिखाते हैं, राजयोग जब सिखाते हैं लोगों को तो यही सिखाते हैं कि राजयोग की उपलब्धि क्या है, कि हम जब चाहें अपने मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन को दिशा दे सकते हैं। तो क्या हम अपने मन को दिशा दे पाते हैं उस समय जब ऐसी स्थिति पैदा होती है, या व्यर्थ संकल्प एक बार शुरू हुए, मानो किसी ने कोई बात कह दी, मुझे फीलिंग आ गई, और फिर वो फीलिंग घंटों तक मेरे मन को डिस्टर्ब रखती है, अशांति मन में हो गई, हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, कई बार घंटों नहीं दिनों भी हो जाते हैं, दिनों तक भी मन स्थिति सही स्थिति में नहीं आ पा रहा, बाबा से योग ही टूट जाता है, योग करने बैठते हैं तो भी वही वही बातें याद आती हैं, इसको हम मन पर अधिकार नहीं कहेंगे। यानी ज्ञान यूज करके हम फुल स्टॉप लगा सकें, मुझे पता है कि मुझे इस चिंतन में नहीं जाना है, और इस चिंतन को कैसे बदलना है वो सब ज्ञान की विधियां हमें मिली हुई हैं, तो उसे हम यूज करके मन को एकाग्र कर ले, मन को कंट्रोल कर ले, जिसको बाबा कहता है ब्रेक लगा सके, हमारा ब्रेक पावरफुल हो। तो जैसे कहते हैं पद चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो ब्रेक चेक करते हैं हमेशा कि ब्रेक ठीक है या नहीं। तो हमारी भी मंजिल तो ऊंची है ना, तो मन के जो हमारे ब्रेक हैं वो पावरफुल होने चाहिए। और सबसे जो हमें अधिक कंट्रोल करना है, जिस पर राज्य करना है, जिसे हम कहेंगे, वो हमारा मन ही है। अगर मन पर हमारा अधिकार हो गया तो स्थूल कर्मेंद्रियों पर तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि मन ही कर्मेंद्रियों के वश होता है अधिकतर, और धोखा मिलता है फिर हमें। मन को अगर हम फरिश्ता स्थिति में स्थित करना चाहते हैं, मन को हम बीज रूप स्थिति में स्थित करना चाहते हैं, मन को हम अव्यक्त स्थिति में, अशरीरी स्थिति में स्थित करना चाहते हैं, जो स्थिति बनाना चाहे, जितना समय बनाना चाहे, मन टिक जाए उसमें, फिर हिले नहीं वहां से। जैसे बाबा कहते हैं अंतिम समय का पेपर क्या होगा, अंतिम समय में सब बातें आपको हलचल में लाने वाली होंगी, परिस्थितियां ही ऐसी होंगी कि मन को शांत रखना चाहेंगे तो भी शांत नहीं रह पाएगा मन। अपने पुराने संस्कार भी उस समय चांस ले सकते हैं, माया भी अपना लास्ट दांव जरूर लगाएगी, जो गेट कमजोर है उस कमजोर गेट से माया घुसने की कोशिश करेगी। फिर जैसे कहा वातावरण वाइब्रेशन भी तमो प्रधान होगा, भूत प्रेत की जो आत्माएं हैं, जो कहा इविल सोल्स, उनके भी वाइब्रेशंस होंगे, उनके भी इफेक्ट हो सकते हैं, और इन सब में होते हुए वो हमारा अंतिम पेपर क्या होगा कि इन सब से न्यारे होकर एक बाबा में बुद्धि लग जाए, एक बार दूसरा ना कोई ये अनुभूति हो, कोई भी परिस्थिति मुझे हलचल में ना ला सके, अचल अचल अजोल स्थिति, तो वो उस समय नहीं होगा, ये बहुत काल का अभ्यास हमारा होगा, तो ही हम लास्ट जो हमारा समय होगा, अंत मति सो गति जिसको बाबा कहता है, उस समय हम ये कर पाएंगे। बुद्धि पर अधिकार का अर्थ बाबा बताते हैं कि बुद्धि निर्णय शक्ति है हमारी, तो सही समय पर सही निर्णय हम ले। अगर हमने सही निर्णय लिया तो हमें सफलता मिलेगी, वो उसका प्रमाण है, और अगर हम निर्णय लेने में चूक गए तो बाद में पछताते रहेंगे, काश ये नहीं किया होता, ये नहीं बोला होता, ऐसे ऐसे हुआ होता, वैसे हुआ होता। या बाबा कहता है जो शक्तियां आपको यूज करनी है, सही समय पर सही शक्ति यूज हो, जब सहन शक्ति यूज करनी है तो सहन कर ले, और जब सामना करने की शक्ति यूज करनी, जैसे परिस्थितियों के लिए हमें सामना करना होता है, व्यक्तियों के लिए हमें सहन करना होता है, तो जहां सामना करना है वहां हम सामना करें, ऐसे नहीं सामना करने की जगह सहन कर लें और जहां सहन करना है वहां सामना कर लें, तो परिणाम उल्टे हो जाएंगे। या जहां हमें समाना है वहां हम समाने की शक्ति का यूज कर पाए, ये परखने की शक्ति, तो परखने की शक्ति भी कहां क्या शक्ति को यूज करना है वो सही समय पर कार्य करे। तो बुद्धि पर हमारा अधिकार है, संस्कारों पर अधिकार के लिए बाबा कहते हैं कि हमारे आदि अनादि संस्कार इमर्ज हों। आदि अनादि संस्कार ही मेरे अपने संस्कार हैं, और जो मध्य के संस्कार हैं, जो माया रावण के संस्कार हैं, वो मेरे संस्कार नहीं है। तो बाबा के संस्कार, आदि अनादि संस्कार, यानी जो बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। शिव बाबा शांति के सागर हैं, शिव बाबा प्रेम के सागर हैं, वो दुख हरता सुख करता हैं, सदा दाता हैं, रहम दिल हैं, सदा सहयोगी हैं, क्षमा के सागर हैं। मेरे यही संस्कार इमर्ज रूप में रहने चाहिए कि हम सदा ही रहम दिल हैं, सदा ही दाता हैं, सदा ही प्रेम स्वरूप हैं, सदा ही शांत स्वरूप हैं। ऐसे नहीं कि बीच बीच में देह अभिमान के संस्कार, बीच में गुस्से के संस्कार, यानी विकारों के संस्कार जो हम कहेंगे, माया के संस्कार, कभी लोभ के संस्कार, कभी अहम के संस्कार, कोई ना कोई संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो फिर हम संस्कारों पर अधिकार नहीं कहेंगे। अगर अभी तक भी ये माया के संस्कार इमर्ज होते रहते हैं बीच बीच में, तो वो अधिकारी नहीं बने हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा कि रोज अपनी कर्मेंद्रियों का पोता मेल चेक करो। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते ना, बाबा अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे रोज। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब बाबा अपनी चेकिंग नहीं करते थे। तो हमें भी रोज चेक करना है रात को सोने से पहले। कौन भाई हैं जो रोज अपना चार्ट लिखते हैं, सोने से पहले रोज अपना चार्ट लिखते हैं? एक है लिखना, बहुत कम है। और जो है लिखते नहीं है लेकिन देते हैं, माना मन ही मन बाबा को अपना चार्ट दे दिया, अच्छा वो संख्या ज्यादा है। और बाकी तो अभी आज से ही इस भट्टी से हम कुछ तो अपनी धारणा बनाएंगे ना। तो फिर आज से सभी को अपना चार्ट सोने से पहले, अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, अपना एक मतलब एक बना लें चार्ट, लिखत बना लें, पूरे महीने का एक चार्ट बना लें और रोज उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको हमें यस नो या जो भी हमारी परसेंटेज रही वही सिर्फ भरना है। वो सिर्फ 5 मिनट का काम होता है, ज्यादा समय नहीं लगता उसमें। और एक बार हमने अटेंशन दे दिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो फिर वो तो हमारे स्वभाव में आ जाता है, फिर नहीं सोचना पड़ता, अपने आप ही समय पर याद आ जाता है कि मुझे चार्ट भरना है। और अगर नहीं लिखते हैं तो भी सोने से पहले जरूर सारे दिन में मेरी कर्मेंद्रियां अधिकार में रही वो हमें चेक करना है। और बाबा कहता है अगर सर्व कर्मेंद्रियां अधिकार में हैं तो आप विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, यानी विश्व महाराजन बनने वाले हैं। अगर पूरा सभी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है तो कोई भी आपको विश्व राजन बनने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई कर्मेंद्रिय धोखा दे देती है और हम सोचते हैं कि एक ही कर्मेंद्रिय कमजोर है ना, ठीक है समय पर ठीक हो जाएगा, तो अगर एक भी कर्मेंद्रिय धोखा दे देती है तो फिर राजा नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। किसी की एक ही कर्मेंद्रिय ज्यादा वीक होती है, बाकी कर्मेंद्रियों पर अधिकार है लेकिन जैसे बोलने में कई बार लूज हो जाते हैं, बाकी सब ठीक है, या कई बार ये सब ठीक है लेकिन आंखें कभी धोखा दे देती हैं। तो वो चेकिंग रखनी है अपने ऊपर। फिर तीसरा नंबर बाबा कहता है कि हर कर्मेंद्रिय कभी ना कभी धोखा देती रहती है। जैसे कहते हैं ना कि चूहे को निकाला तो बिल्ली आ गई, बिल्ली को निकाला तो कुत्ता आ गया, मतलब एक को ठीक करते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसे है, कर्मेंद्रियों के दास हैं, इसको ऐसे बाबा कहते हैं, तो फिर क्या बनने वाले हैं? दास और दासी बनने वाले हैं। किसी ना किसी कर्मेंद्रिय के वश रहते ही हैं, कोई ना कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती ही रहती है, तो फिर पद क्या मिलेगा? ये ज्ञान का दर्पण अपना दर्पण है, इसे हम समझ सकते हैं। कई बार प्रश्न उठता है कि हम क्या बनने वाले हैं, भविष्य में हमारा पद क्या होगा, तो इसे हम चेक कर सकते हैं। साहूकार कौन बनेंगे, ये बाबा ने मुरलियों में बताया हुआ है। साहूकार कौन बनेंगे? बाबा कहते हैं जिनके पास ज्ञान रत्नों का बहुत खजाना है, ज्ञान रत्नों का दान भी करते हैं, लेकिन जब समय आता है उस ज्ञान रत्न को स्वयं यूज करके विजयी बन जाएं, वो शक्ति नहीं है। जैसे दूसरों को सुनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम खुद कर लें ये इतना आसान कई बार नहीं होता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर साहूकार, क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना तो है लेकिन समय पर अपने लिए यूज नहीं कर पाते, तो साहूकार बन जाएंगे, राजा नहीं बन सकते। तो हम अपनी चेकिंग रखेंगे तो जो भी कर्मेंद्रिय हमारी कमजोर हैं, उस पर हमारा अधिकार होने लगेगा। और लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट हम आ सकते हैं, ये बाबा का वरदान है। और बाबा ये भी कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ ही राजा बनने की कोशिश करें, यानी जो हमारे साथी हैं उन पर हम राज्य करना शुरू कर दें। तो दूसरों पर हमें राज्य नहीं करना है, अपने आप पर राज्य करना है। दूसरों के लिए तो हम सेवाधारी हैं, लेकिन स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर हम राजा हैं। इस बात को अच्छी तरह समझना है। तो आज की मुरली सुन करके मैंने सोचा कि एक मुरली का रिवीजन भी होगा और हमारा अटेंशन भी उसके ऊपर जाएगा। तो आपसे ये रूढ़िहान की ओम शांति। भाई पूछ रहे हैं दादी जी के साथ रहने के अनुभव सुनाओ। तो फिर तो योग करना चाहेंगे या क्लास सुनना चाहेंगे? और हाँ जी, अच्छा अनुभव सुनना है। अब दादी जी के साथ रहने के अनुभव तो काफी लंबा है, लेकिन मैं 6:30 तक जो कुछ सुना सकती हूँ, जो मेरे दादी के साथ के अनुभव रहे वो मैं कोशिश करती हूँ। हम यहाँ आए थे 1989 में पांडव भवन में, और उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उसी के निमित्त हमारा आना हुआ था। एज ए डॉक्टर, जैसे मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी उस अनुसार, लेकिन उस समय हॉस्पिटल बना नहीं था, हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैं पांडव भवन डिस्पेंसरी में थी उस समय, हमें वहां रखा गया। आए थे हम इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन फिर बड़ों ने डिसाइड किया, क्योंकि मैं सेंटर पर रहती थी, मैं सेंटर से आई थी, तो बड़ों ने डिसाइड किया कि वापस नहीं जाना है, अभी आप यहीं डिस्पेंसरी में सेवा करो, क्योंकि उस समय पांडव भवन में ही सारी सीजन चलती थी। एक पांडव भवन ही था और कोई कॉम्प्लेक्स था ही नहीं उस समय। तो फिर वहां जब डिस्पेंसरी में सेवा करने लगे, उस समय मधुबन में सब दादियां थे, जितनी भी दादियों के हम नाम सुनते हैं सभी दादियां थे मधुबन में। तो सभी की पालना मिली उस समय। बड़ी दादी से मुझे उस समय थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो हम सोचते थे कि पता नहीं, मतलब उनसे क्या बात करें, कैसे बात करें। तो कभी सामने भी पढ़ते थे तो ओम शांति करके फटाफट निकल जाते थे ऐसे, क्योंकि उसके पहले मैं कभी भी दादियों के संपर्क में नहीं आई थी। मैं मेडिकल पढ़ती थी तो पढ़ाई में हम बहुत बिजी होते थे, तो मधुबन भी मेरा एक दो बारी सिर्फ बाबा मिलन में एक दो दिन के लिए ही आना हुआ था। तो ये जैसे सीधा हम रहने लगे तो इतना समीप नहीं थे। तो फिर उस समय पेशेंट्स के लिए, जैसे बनासी भाई जी थे डिस्पेंसरी में, तो वो कहीं बाहर चले गए, और जैसे अपने घर में मधुबन वाले हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो दादी उनका समाचार लेती थी, तो बनासी भाई जाकर के सुनाते होंगे, वो हमें नहीं मालूम था। उस समय मैं नई थी तो वो नहीं थे, तो दादी ने मतलब मेरे को देखा आंगन, आपको पता है मधुबन का आंगन, तो वहां सभी मिल जाते हैं। तो दादी ने मुझे बुलाया और फिर दादी ने मुझे कहा कि कौन कौन घर के पेशेंट हैं। तो फिर जो ज्यादा बीमार थे, यानी जिनको कमरे में जाकर दवाई वगैरह देनी पड़ती थी, मैंने बताया दादी को, एक दो थे भाई थे वो। तो फिर दादी ने मुझे कहा कि तुम रोज मेरे पास आओ और रोज आकर के मुझे बताओ कि कौन अभी घर में बीमार है, और दादी को, अगर दादी को लगता है कि दादी को पूछने जाना है, जैसे बाबा खुद पेशेंट्स के पास जाते थे तो दादी भी ऐसा करते थे, तो अगर मुझे जरूरत है उनसे मिलने की तो मैं फिर मिलूंगी जाकर के, तो पता होगा तभी मिलेंगे। तो फिर दादी ने कहा सुबह आ सकते हो, शाम को, रात को, कभी भी, जैसे भी आपको समय है उस समय आकर के मुझसे मिल सकते हो। तो जब दादी ने इस तरह से मेरे से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि इतना कठिन नहीं है, दादी तो बहुत प्यार से बात कर रही है इतने अच्छे से। और फिर मैं देखती थी उससे पहले कि कुछ लोग गुड मॉर्निंग करने जाते थे दादी को सुबह सुबह कमरे में, और कुछ लोग रात को गुड नाइट करने भी जाते थे, और खासकर जब विदेश की बहनें आती थी तो वो खास दादी के पास जाते थे, पर हमारी हिम्मत नहीं होती थी, हम सिर्फ देखते थे कि हाँ दादी के कमरे में ये लोग जा रहे हैं, तो इच्छा तो होती थी लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। अब जब दादी ने ही निमंत्रण दिया तो फिर हमने जाना शुरू किया। तो मैं रात के समय गई दादी के पास, जब पहली बार गई तो उसी समय मुन्नी बहन, उनको भी पता था कि मैं यहाँ आई हूँ अभी, और उनसे मेरी कोई पहचान नहीं थी, उनको मैं इतना जानती भी नहीं थी और कोई बातचीत भी मेरी नहीं हुई थी। बस एक बार वो डिस्पेंसरी में दवाई लेने आए थे तो मैंने दिया था उनको, और वो दवाई से उनको फायदा हुआ था तो उनको शायद मेरे में फेथ हो गया, मैं ऐसा समझती हूँ। तो जिस विश्वास से उन्होंने मुझे उस दिन बोला कि आपको दादी का रात को कुछ कुछ, जो भी दादी को कभी दवाई लगानी होती है, कुछ भाप देनी होती है, दादी को खांसी रहती थी तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट होते थे जो वो करते थे, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको रोज रात को आना है और मुझे मदद करनी है। तो मुझे और खुशी हुई कि हाँ देखो, मतलब बाबा ने कैसे मुझे ये चांस दिया है। और उसके बाद से मैं रोज रात को दादी के वहाँ जाने लगी कमरे में, और वो जो भी वो कहते थे वो मैं करती थी। तो मैंने ये बहुत विशेषता देखी कि दादी रात को सोने से पहले मुरली पढ़ते थे जरूर, बिना मुरली पढ़े कभी दादी सोते नहीं थे। और फिर मैंने कहा ना, जैसे बहनें आती थी कुछ गुड नाइट करने आती थी तो दादी उनके साथ पॉइंट्स भी शेयर करते थे, मुरली में कोई ऐसी पॉइंट है और या उससे संबंधित कोई मम्मा बाबा की बात याद आ गई दादी को, तो दादी वो सुनाते थे। तो हम चार पांच लोग जरूर होते थे रात को उस समय दादी के पास, और उसे कहते थे दादी की गीता पाठशाला है, मतलब वो नाम ही था ऐसे प्रसिद्ध था कि दादी की रात्रि गीता पाठशाला है ऐसे। तो वो बहुत अच्छा लगता था हमको। बाद में तो मैं जब दादी के साथ रहने लगी तो मैंने देखा दादी रात को सोने से पहले ही मुरली नहीं पढ़ती थी, दादी चार बार मुरली पढ़ती थी। अमृत वेला करने के बाद फिर मुरली क्लास में दादी जरूर आती थी, मुरली सुनाते थे दादी। जब बीमार भी थे, मतलब इतना पूरा मुरली नहीं पढ़ सकते थे, तो भी एक पेज भी मुरली लास्ट में दादी आकर पढ़ती थी, जो पुराने भाई हैं वो सब जानते हैं। और फिर शाम को जब सोकर उठती थी दादी तो भी मुरली पढ़ती थी। तो दादी की जो स्टडी थी वो मुरली ही थी। कभी जब महीने में ज्ञानामृत आई तो दादी ज्ञानामृत देख लेती थी, उसमें से कोई लेख पढ़ने जैसे होते थे तो दादी पढ़ते थे, या कोई अपनी मैगजीन निकली कोई ऐसी तो फिर दादी देखती थी, अदरवाइज दादी सिर्फ मुरली ही पढ़ते थे सारा दिन में। और हम देखते थे दादी को मुरली कभी भूलती ही नहीं थी, क्योंकि चार बार कोई मुरली पढ़ लेगा तो भूलेगा वो उसे, कभी भूल ही नहीं सकता है। तो दादी को वो स्मृति में है, और इसीलिए दादी की स्थिति भी ऐसी होती थी कि बाबा के समान उनके गुण। और हम देखते थे मुरली पढ़ के एक मिनट में दादी सो जाती थी, एक मिनट भी नहीं लगता था। तो मेरे को आश्चर्य होता था, मैं सोचती थी मैं बिस्तर पर जाती हूँ आधा घंटा लगता है मुझे नींद आने में, और दादी इतना बड़ा कारोबार संभालती हैं और एक मिनट में सो जाते हैं। उसका कारण था मुरली पढ़ के सोते थे, मतलब पूरा एकदम क्लीन हो जाता है माइंड। और कुछ जो वीआईपी मिलते थे दादी को, जब मैं दादी के साथ सेवा में रहने लगी तो मैं देखती थी जब वीआईपी मिलते थे, हम दादी के साथ होते थे तो वो पूछते थे कई बार दादी को कि दादी आप इतना हल्का कैसे रहते हैं, आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी कहती थी मैं कभी अपने आप को हेड समझती ही नहीं हूं, इसीलिए मुझे कभी हेडेक नहीं होता है। ये सब बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, बाबा की इतनी भुजाएं हैं, ये सब कार्य करते हैं। तो कभी भी किसी भी बात को लेकर के टेंशन में आते हुए, परेशान होते हुए हमने दादी को नहीं देखा। और कभी भी ये भी, जैसे अभी आज हमने बात की कि सारे केसेस दादी के पास आते थे, कुछ भी हुआ, अब इतना बड़ा संगठन है, ऊंच नीच होती है, कोई दो जनों के बीच में बातचीत हो गई या सेंटरों की समस्याएं भी आती थी, दादी तो सुनेगी, निमित है, उन्हें सुनना ही है, तो सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे और फिर डिसीजन भी देना है, जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही, एक गलत एक सही होता ही है, उसमें डिसीजन दिया दादी ने। उसके बाद जैसे कि दादी को याद ही नहीं, और जिनकी बातें सामने आई उनके साथ भी कभी दादी का व्यवहार नहीं बदलेगा, बिल्कुल वैसे के वैसे फिर। और कभी सेकंड पर्सन से उसके लिए कभी बात करें, जैसे हम मम्मा के विषय में सुनते हैं ना कि मम्मा कभी भी किसी की बात नहीं करती थी, ऐसे ही हमने दादियों को भी देखा, बड़ी दादी को तो बहुत समीप से देखा और दादियों को भी देखा, तो कभी भी किसी की बात करना कि देखो ऐसे किया इन्होंने ऐसे किया, क्योंकि सब बातें तो आ रही हैं, आपस में तो कर ही सकते हैं, लेकिन कभी नहीं। और ये भी देखा दादी की अनासक्त वृत्ति, इतना सब कुछ यज्ञ में आता था, मतलब जो भी आएंगे वो दादी को मिलना चाहते हैं, दादी को देना चाहते हैं, और दादी बहुत प्यार से मिलती भी थी। मधुबन में तो हम देखते थे दादी आंगन में बैठी होती थी, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, नाश्ते के पहले, दादी का नाश्ता 9 बजे के बाद ही होता था, और मुरली क्लास तो उस समय 7:30-7:45 पूरी हो जाती थी, जल्दी शुरू होती, 6:30 मुरली शुरू होती थी, ये तो बाद में 7 बजे का टाइम हुआ। तो दादी थी, उसके बाद मुझे एक सेवा और मिली थी उसी बीच में, मेरे को कहा था कि मुरली क्लास से आपको दादी को वापस लेकर आना है, मुन्नी बहन जी छोड़कर आ जाते थे दादी को क्लास में, लेकिन लाने के समय वो बिजी होते थे क्योंकि कारोबार बहुत होती थी उनकी, तो पहले जो बहन उनको लेके आती थी वो घर चली गई लंबे टाइम के लिए, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप दादी को मुरली क्लास से वापस लेकर के आना। तो जब मैं दादी को लाने लगी तो मैंने देखा कि दादी सीधा आंगन में नहीं आती थी, दादी डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाती थी, खासकर जो भाइयों ने दादी से बात किया होता था कि कुछ प्रॉब्लम है या उसके कोई डिसीजन लेने हैं, तो दादी चली जाएगी सीधा क्लास के बाद उनके पास अपने आप, वो कई बार एकदम तो ऐसे आश्चर्य में आ जाते थे कि दादी जी आ गए यहाँ पर, और फिर दादी उसी समय उनको देखेगी, सब जो भी देखना है दादी को वो देख के वो तुरंत निर्णय दे देगी, माना कभी भी डिले नहीं करती थी, तुरंत का तुरंत जैसे वो काम हो जाना चाहिए, जैसे बाबा भी हमेशा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य, तो वो सब चक्र लगा के आधा घंटा, कई बार लेक पर भी जाती थी दादी, नक्की लेक का भी चक्र लगाती थी, फिर आके आंगन में बैठती थी, और फिर जो भी मिलना चाहे वो दादी से आराम से मिलते थे। तो मैं देखती थी कि बहुत कुछ दादी के सामने लोग लाते थे, लेकिन कभी भी दादी की बुद्धि उसमें नहीं जाती थी कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये कमरे में रख दो या ये मेरे लिए रख दो, बाद में काम आ जाएगी, या एक लिफाफा भी दादी अपने पास रख ले, ईशु दादी के पास लिफाफा जाएगा माना ईशु दादी के पास ही जाएगा, कभी पर्स पकड़ते हुए हमने देखा नहीं। खैर दादी के साथ तो नेचुरली जो है वो उनका पर्स पकड़ेंगे, उनके लिए सामान रखेंगे, लेकिन हमने कभी भी दादी की बुद्धि किसी चीज में जाती हो या कोई भी व्यक्ति में भी गई हो कभी नहीं देखा। तो बाप समान स्थिति देखी हमेशा दादी जी की, और कभी भी किसी से क्रोध से काम कराते हुए नहीं देखा, किसी को कंट्रोल करते हुए नहीं देखा, हमेशा कोई भी बात होती थी तो मधुबन वालों से लगभग हर 15 दिन में दादी मिल लेती थी, और फिर क्लास में सारी बातें हो, जैसे अब कईयों की शिकायत आई है, किसी ने कुछ कर दिया, मानो कोई मारपीट भी हो गई दो लोगों के बीच में, और दादी के पास ही आएगा वो, तो दादी जो है वो क्लास में सबके सामने बताएंगे, जैसे बाबा मुरली में बता देते, बाबा मुरली में सब बात कहते हैं, तो दादी सबसे मिलेंगी और सारी बातें, फिर कहेगी अच्छा आप ही बताओ अभी क्या करना है, माना सबकी राय लेते थे हर बात में, राय लेकर के और फिर पता ही है कि क्या डिसीजन होना है। तो ऐसे दादी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बाबा कहते हैं, वैसे तो कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस, लेकिन दादी का लवफुल ही था, बहुत लव से ही दादी ने सभी को चलाया। और माताओं के लिए तो हम देखते थे दादी पर बिल्कुल बलिहार जाती थी एकदम, माना दादी दिखी माना जैसे वो नहीं होता है कि मधुमक्खियां शहद पर होती हैं, छोड़ती ही नहीं है ऐसे, तो ऐसे ऐसे हम महसूस करते थे। और क्लास में भी आते थे तो बिल्कुल एकदम वातावरण बदल जाता था क्लास का, दादी क्लास में आई तो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था, तो दादी का ऑरा ही अलग था बिल्कुल। ओम शांति।
जी।